તારીખ 10/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 466 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
124 निवृत्ति क्षेत्र में से पिछला से पत्र लिखा है, जिससे धर्म मांगना वो प्राप्त हुआ है उसकी पूर्ण चौकसी यानी खात्री करनी, यह वचन को स्थिर चित्त से विचारना। क्या कहा है, मुमुक्षु जीव को धर्म की इच्छा होती है और धर्म प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं जाता है, तो कहते हैं कि जहां भी जाए, जिसके पास वो जाए, उसको धर्म प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है इसका चौकसाई करना, मतलब उसका परीक्षण करना। जहाँ भी धर्म की बात चलती हो वहां से धर्म प्राप्ति हो जाती हो ऐसा नहीं बनता। धर्म का विषय जगत में हमेशा हमेशा रहस्यभूत रहा है और जीव अनजाना है तो कहीं भी धर्म क्षेत्र में चला जाता है। प्राय संप्रदाय के धर्मगुरु के पास जाता है, कभी कभी और जगह भी जाता है, ऐसा बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम हीरा जवाहरात गहना सोना अलंकार हर जगह से नहीं लेते, कोई विश्वास होता है उनके पास से लेते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें क्या है क्या नहीं है, माल सही है या मिलावट वाला है हम तो जानते नहीं। इसलिए सैकड़ों दुकान जोहरी बाजार में होती है, फिर भी हम किसी एक विश्वासु दुकानदार के पास जाने का निर्णय लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सगे संबंधी हो इसलिए इसके पास जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि दुकान बड़ी है इसलिए जाना चाहिए, बहुत बड़ा शोरूम है इसलिए जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। दुकान छोटी है इसलिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी बात नहीं है। बात रही प्रामाणिकता के, कि जिससे भी कीमती माल लेना है वो प्रमाणिक हो, भले ही मुनाफा ले लेकिन प्रमाणिकता से ले और मिलावट नहीं करे, इस तरह से हम लेते हैं। धर्म तो इससे भी ज्यादा कीमती चीज है, सोना हीरा से भी वो ज्यादा मूल्यवान चीज है, इसलिए हर जगह से वो मिलना का अभिप्राय या प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सही धर्म प्राप्त होता है तो जन्म मरण का नाश होकर के निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, और गलत जगह फंस जाते हैं तो संसार परिभ्रमण बढ़ता है, ग्रह मिथ्यात हो जाता है, संसार परिभ्रमण बढ़ता है। इसलिए स्थिर चित्त से, मैंने शांत चित्त से इसका विचार करना कि हमें कहां से धर्म की प्राप्ति करनी चाहिए, और जहां से भी करनी है उसकी परीक्षा तो अवश्य अवश्य करनी चाहिए, परीक्षा के बिना नहीं चले उसमें। अब ये प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि परीक्षा करने की हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए हम कहीं न कहीं फंस जाते हैं, इसके लिए क्या करें, ये भी एक नई समस्या तो है। तो इसके लिए एक अच्छा मीटर है नाप करने का, वो हमारे में ही है कि पहले तो हम कोई भी वांछा के बिना केवल आत्म कल्याण के लिए कहीं धर्म स्थान में जाते हो तो ये हमारे में एक मीटर पैदा हो जाता है जो हमारी भावना है। फिर से हमारी क्या भावना है कि केवल हमें आत्म कल्याण करना है और कोई वांछा इच्छा धर्म के क्षेत्र में हमारी नहीं है, इतना तो हमारा होना चाहिए। अगर हमारी केवल आत्मकल्याण की भावना है तो उस भावना की पुष्टि होती है, उसको पोषण मिलता है, तो वहां जाना चाहिए। अगर उसको कहीं भी ठेस पहुंचती है तो वहां नहीं जाना चाहिए। बस अगले का नाप निकालने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो अपनी योग्यता चाहिए, दूसरे का नाप निकालने के लिए अपने ज्ञान चाहिए, अपनी योग्यता चाहिए, तो वो नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से तो पता चलता है कि हमारी आत्मभावना को पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, उसका थोड़ा सूक्ष्मता से उसका अवलोकन करना चाहिए कि अब और वांछा होगी तो उसका विचार विकल्प आए बिना नहीं रहेगा। जिसकी भी जरूरत है इसका विचार विकल्प चलेगा चलेगा और चलेगा ही, अवलोकन करने से पता चल जाता है कि हमारी कोई और वांछा है क्या, तो हम धर्म के लिए लायक नहीं है। धर्म के क्षेत्र में भी अगर हमारी कोई दूसरी इच्छा वांछा रही तो हम धर्म के लायक नहीं है, धर्म प्राप्त करने के लायक नहीं है। जब हमारी योग्यता नहीं है तो सामने तीर्थंकर भी बैठे हो हमारे काम के नहीं है, वो तीर्थंकर भी हमको धर्म प्राप्त करना करने कराने के लिए सक्षम नहीं है, क्या कोई दूसरे का काम करा देता है, वो तो है नहीं, वस्तु के स्वरूप में ही वो बात नहीं है। इसलिए पहले अपना अपने को अपनी साफ नियत है कि नहीं वो पहला पक्का करना पड़ता है, और वो पक्का करने से जो आत्म कल्याण की भावना होती है वो शुद्ध अंतकरण से होती है, और जो शुद्ध अंतकरण से भावना होती है तो उसका पोषण मिलता है नहीं मिलता है वो बात अनुभव में आती है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसके लिए, वो बात अनुभव में आती है, और अनुभव में आती है तो बात का पता चल जाता है कि यहाँ बैठना चाहिए या यहाँ नहीं बैठना चाहिए। बस उस तरह से बराबर काम पक्का करके धर्म का धर्म की इच्छा करना, धर्म मांगना, ऐसे नहीं जाना। उसमें भी एक और बात है, कभी कभी मुमुक्षुओं में भी या धर्म के क्षेत्र में आने वाले लोगों में भी दो प्रकार के परिणाम ऐसे होते हैं जहां वो खुद ही धोखा खा जाता है ऐसे मामलों में। वो कैसे कि किसी को बोलने वाले की शैली का राग हो जाता है कि कैसी अच्छी पद्धति से वो समझाता है, किसी की ऑरेटरी अच्छी होती है, किसी का सूक्ष्म ज्ञान अच्छा होता है, बहुत जानकारी वाला होता है, बहुत शास्त्र का आधार दे सकता है, बहुत शास्त्रों में से बताता है, किसी की आवाज अच्छी होती है, मीठी आवाज जिसको कहते हैं, गाते हैं बजाते हैं या अच्छी शैली से प्रवचन देते हैं, तो हमको इसका राग हो गया, जानकारी का राग हो गया या सुनने का कान में मीठापन लगता है इसके आवाज का राग हो गया या इसकी शैली का प्रवचन शैली का ऑरेटरी का राग हो गया, तो भी हम धोखा खा जाएंगे। वास्तव में वहां आत्मकल्याण की भावना नहीं है, हम हमारे राग के पोषण के हेतु जाते हैं। प्रशंसा भी करेंगे, क्या प्रवचन चलता है, कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, सुनो तो सही। तुम्हें क्या सुना, उनकी आवाज सुनी या उनके शैली को, प्रवचन की शैली, ऑरेटरी, वक्तृत्व करा को अच्छा लगा, क्या लगा तुमको? ऐसे राग के पोषण हेतु भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें केवल आत्मकल्याण के पोषण हेतु जाना चाहिए। ये बात हमारे में भी अगर साफ नहीं है या इस विषय में हमारी समझ में कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो हम धोखा खा जाएंगे। तो ये सब बातें कृपालु देव के एक वचन में रही है, जिससे भी धर्म मांगना हो वो धर्म को प्राप्त हुआ हो कि नहीं हुआ हो उसकी चौकसी कर लेना, उसकी खातरी करना, उसका परीक्षा करना, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। चिकित्सा करना वो ज्ञान का स्वभाव है, क्या वो चिकित्सा कर लेता है, पर चिकित्सा करनी भी चाहिए तभी हमको लाभ होगा, वरना लाभ होने की जगह नुकसान होने की संभावना बहुत बहुत है। तो इस पत्र में 9 पॉइंट पर किसी पर ये पत्र लिखा है हमको मालूम नहीं है, धर्म नहीं दिया है, लेकिन 9 पॉइंट दिया है, पैराग्राफ नंबर दिया है, कृपाल ने खुद ही उसमें पहले वो बात दिया है। जिसके पास से धर्म मांगना, वैसे पूर्ण ज्ञानी का आपकी पहचान जीव को हुई हो तब वैसे ज्ञानी का सत्संग करना और ऐसा सत्संग होवे तो पूर्ण पुण्योदय समझना। क्या कहा कि अगर हमको इतनी योग्यता हुई हो कि जिसके पास हम जाते हैं वो ज्ञानी है, बराबर ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी, मैंने वास्तव में ज्ञानी है ही, अगर ऐसी पहचान हुई हो तो उसका सत्संग में रहना, हो सके उतना ज्यादा सत्संग करना, और ये सत्संग मिले तो ये बड़ा भाग्योदय समझना, पुण्योदय समझना चाहिए। जगत में पुण्योदय का अनेक प्रकार है, किसी की तंदुरुस्ती अच्छी होती है, किसी को सत्ता मिल जाती है, किसी को पैसे मिल जाते हैं, किसी को कुटुंब परिवार मित्र मंडल आदि बहुत अच्छे बढ़िया मिल जाते हैं, किसी को राज मिल जाता है, किसी को देवलोक भी मिल जाता है, बहुत से प्रकार हैं। ये सभी प्रकार के पुण्योदय में ज्ञानी पुरुष का सत्संग मिले इसके बराबरी में कोई पुण्योदय नहीं है, क्योंकि ये सब अलग जात है, ये अलग जात है। बाह्य परिस्थिति चाहे जैसी हो, रोगिष्ट हो, निर्धन हो, कुछ भी हो, हाँ तभी सही मूल्यांकन आएगा। वही तो लिखा है कि इसी ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी का पहचान जीव को हुआ हो तब उस ज्ञानी का सत्संग करना, और वो सत्संग मिले तो पूर्ण पुण्योदय समझना, फिर वो अधूरा पुण्य नहीं है, पूर्ण पुण्योदय बोला है। पार में कुछ भी हो, पाप का योग हो सकता है बार में, बीमारी हो, निर्धनता हो, अनेक प्रकार के अंतराय आड़े आते हो, बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी सत्संग मिला, सत्संग हुआ तो समझना कि ये पूर्ण पुण्योदय है, पूरा पुण्य का उदय समझ लेना। ये आगे होने वाले जो होनहार है, अच्छा होनहार है, उसका संकेत है इसमें, इसलिए कहते हैं कि ये बड़भागी है कि जिसको ऐसे ज्ञानी का सत्संग मिला करता है या मिलता है। यह सत्संग में ऐसे परम ज्ञानी ने उपदिष्ट शिक्षा बोध ग्रहण करना, ऐसे सत्संग में जाकर के जो भी बोध मिलता हो उसको ग्रहण करना, क्योंकि ग्रहण करने की भावना से जाता है वो तो ग्रहण करेगा ही, क्योंकि उसको तो दूसरा तो कोई चाहिए नहीं, उनको तो अपना आत्मकल्याण करना है, आत्मकल्याण की शिक्षा मिलती है, बोध मिलता है तो उसको ग्रहण करेगा। यानी जिससे मैंने बोध ग्रहण होने से कदाग्रह मतमतांतर विश्वासघात और असत वचन ये आदि का तिरस्कार हो जाए, अर्थात उसे ग्रहण करना ग्रहण नहीं करना, क्या होगा कि बोध ग्रहण करने से कदाग्रह छूट जाए। कदाग्रह क्या होता है, कुछ न कुछ बाहरी क्रिया या बाहरी पदार्थ का आग्रह को कदाग्रह कहते हैं। जैसे हमको मालूम हुआ कि हमारे कुल धर्म का संप्रदाय है वो सही संप्रदाय नहीं है, उसमें सच्चे देवगुरु की परिस्थिति देखी नहीं जाती या सत्संग में नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति है, फिर भी अगर हम हमारे संप्रदाय को नहीं छोड़ सकते तो ये हमारा कदाग्रह है। या संप्रदायिक क्रिया को नहीं छोड़ सकते तो वो भी हमारा कदाग्रह है, वो कदाग्रह को छोड़ देना। आत्मकल्याण के हेतुभूत ऐसा जो सत्संग मिलता हो तो उस सत्संग की मुख्यता रख करके सब चीज गुण कर देना, किसी को मुख्य नहीं करना। मिलते मिलते जो कुछ होता हो अलग बात है, जैसे त्याग भूख करते हैं हम, कुछ गृहस्थी में भी त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सत्संग को रख करके करना है। अब क्या करें, हमको तो 3 दिन का उपवास था या 8 दिन का उपवास था, हम बैठ नहीं पाते थे, आने जाने हमारे लिए कमजोरी के हिसाब से नहीं हो रहा था, तो हम सत्संग में नहीं आ पाते थे। ऐसा नहीं करना, वो कदाग्रह है कि सत्संग भले ही छूट जाए, हमको करना है, वो करना ही है, कुछ न कुछ करना है, वो छूट जाना चाहिए कोई भी क्रिया। ऐसे कदाग्र छूट जाना चाहिए, मत मतांतर छूट जाना चाहिए। मत मतांतर मैंने मत के मंडन खंडन में मुमुक्षु को नहीं जाना चाहिए, ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। सही मत कौन सा है, यानी तीर्थंकर देव का मत कौन सा है, एक ही सही होता है, वो हमको जानना है, समझना है, पहचान करना है और अंगीकार भी करना है। बाकी के जितने भी मत है वो मतांतर है, दूसरे मत है, मतांतर मैंने दूसरा मत है, तो उसकी चर्चा में किसी के साथ नहीं जाना है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए सही रास्ता पकड़ लेना, ऐसा नहीं है कि अपने आत्म कल्याण के लिए सही मत कौन सा है, सही मत कौन सा नहीं है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करें हम, ये बात नहीं होना चाहिए। ये तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसमें कल्याण अकल्याण की समस्या है। लेकिन दूसरे के साथ मत मतांतर की चर्चा में हमें जाना उचित नहीं है, वो बात है, उसमें नुकसान होगा। क्योंकि मुमुक्षु का जो स्टेज होता है, स्तर होता है, वो दूसरों को समझाने का नहीं होता है। आपस में सत्संग करे एक बात है, और दूसरों को समझाने का अभिप्राय रख करके बात करें वो दूसरी बात हो जाती है। उसमें उपदेशकपना हो जाता है, क्या हो जाता है, उसमें उपदेशकपना हो जाता है, तो मुमुक्षु का स्टेज नहीं है। ये तो कहेंगे कि हम भी उपदेशक नहीं बनते, ज्ञान हुआ है, ज्ञान प्राप्ति हुई है, लेकिन हम उपदेशक नहीं बन करके बोलेंगे, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट उपदेशक तो तीर्थंकर देव होते हैं। 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था है, वो सर्वोत्कृष्ट उपदेश देने की अवस्था है। इसके बाद अगर उपदेश का कोई स्टेज है तो ये 6ठे गुण स्थान वाले निग्रंथ मुनिराज का होता है, वो 6ठे गुण स्थान में उपदेश देते हैं। 7वें गुण स्थान में निर्विकल ध्यान होता है, वहां उपदेश का योग नहीं होता, वाणी का योग नहीं होता। बस इसके नीचे कोई उपदेश का स्टेज नहीं है। वो बात कृपालु देव ने 837 नंबर के पत्र में किया है, 837 उपदेश के, वो आत्मसिद्धि की गाथा लिए रहे हो, समदर्शिता और आत्मज्ञान, विचरे उदय प्रयोग, वो जो गाथा लिया है, अपूर्ववाणी परम स्वरूप सदगुरु लक्षण योग, तो उसमें वो बात का स्पष्टीकरण खुद ने दिया है 837 नंबर के पत्र में। तो ज्ञानी बात करते हैं, कभी मार्ग भी बताते हैं, लेकिन उपदेशक होकर के नहीं, सत्संग करते हैं, वो बात स्पष्ट किया है, और भी जगह किया है, इस पत्र में भी किया है। तो जो शिक्षा बोध ग्रहण करता है उसका कदाग्र छूट जाता है, वो मत मतांतर में नहीं पड़ता है, वो किसी से विश्वासघात नहीं करता है, यानी विश्वास किसी का विश्वास को घात करके कुछ नहीं करता है, और असत वचन आत्मने झूठ नहीं बोलता है, ये आदि का उसको तिरस्कार हो जाता है, उसका उनको तिरस्कार होता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, हमको बहुत नुकसान का कारण है, अर्थात वो ग्रहण नहीं करते। मत का आग्रह छोड़ देना, खास करके मताग्रह को तो छोड़ देना। मत के आग्रह में स्वयं के संप्रदाय का आग्रह मुख्य होता है। क्यों वो मुख्य होता है? कि जीव उस संप्रदाय में जन्म क्यों लिया? कर्म सिद्धांत ऐसा है कि जैसी मति वैसी गति, तो जिस संप्रदाय में जिसका जन्म हुआ है वो उसी प्रकार की मति लेकर के आया है, तो उसको अपना संप्रदाय का आग्रह स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से रहेगा ही रहेगा, वो छोड़ देने की बात है। उसको छोड़ देना, अपना संप्रदाय का आग्रह नहीं रखना, चाहे दिगंबर हो तो भी। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, धर्मदास जी शूलक ने कहा है कि मैं विष्णु नहीं, मैं बौद्ध नहीं, मैं श्वेतांबर नहीं, मैं पीतांबर नहीं, वो पीले कपड़े पहनते ना वो, और मैं दिगंबर भी नहीं, मैं जैन भी नहीं, वहां तक लिख दिया है। ऐसा क्यों लिखा? कि मुझे कोई मताग्रह नहीं है, जो ज्ञानी होते हैं वो तीर्थंकर देव के मार्ग पर चलने वाले जीवात्माएं होते हैं, कहीं से भी आए हो, कहीं अन्य मत से भी आए हो, और गौतम स्वामी आए थे अन्य मत से ही आए हैं। गौतम स्वामी जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे, वो तो अन्य मत में हुए थे, तो उसका कोई अगर मताग्रह होता है तो गड़बड़ होगी। अरे भगवान ने ये क्या किया, हम लोग तो मूल दिगंबर हैं, मूल जैनी है, हमको तो गंधर्व बनाया नहीं और बाहर वाले को बना दिया। हाँ, ये कोई न्याय है क्या? क्या भगवान के पास भी कोई लागवक चलती है क्या? हाँ, कि क्यों मैं आगे खड़े हूं उसको तो पीछे रखते हैं और पीछे वाले को आगे ले लेते हैं, क्या बात है? तो वहां तो मेरिट्स पर काम चलता है। कहां? भगवान का मार्ग तो गुण का मार्ग है, जिसको गुण ज्यादा है उनको आगे लेते हैं, उसमें नाच जात वो देखते नहीं है। तो इसलिए संप्रदाय बुद्धि में संकुचितता आती है, गुटबंदी होती है, ग्रुपिज्म, और अधिकार वाली बात पैदा हो जाती है, और ऐसे परिणामों से पाप बुद्धि हो जाती है, और जीव कितना कब पाप करता है इसका कोई हिसाब नहीं रहता फिर। इसलिए मत का आग्रह छोड़ देना, क्या लिखा है? मत का आग्रह छोड़ देना, मताग्रह नहीं होना चाहिए कभी भी। और इसलिए भले ही वर्तमान काल में दिगंबर संप्रदाय में सही देवगुरु शास्त्र है, बाकी तो देन के नाम से भी जो अन्य संप्रदाय श्वेतांबर आदि चलते हैं उसमें तो गड़बड़ हो गई है, ऐसा होने के बावजूद भी दिगंबर संप्रदाय में ये जो पिछले भगवान के बाद 2500 साल चला गया, बहुत सी विकृतियां आई हैं, और सही कार्य पद्धति को सब समझते हैं ऐसी बात नहीं है। वहां भी कुदेवादी की स्थापना चालू हो गई है, और कई प्रकार की और भी विकृतियां चालू हो गई हैं, तो उसमें सही बात कौन है, विकृति कौन से, कोई जानते नहीं, और सब ऐसे ही कहेंगे हमारे में ऐसा ही होता है, हमारे में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो सही कहाँ तक है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए कृपाणुदेव लिखते हैं कि ज्ञानी के मार्ग पर चलना, कहाँ चलना, ज्ञानी के मार्ग पर चलना, वही तीर्थंकर देव का मार्ग है, वही ज्ञानी का मार्ग है। और सब विकृतियां हो गई, सभी जितने भी संप्रदाय वर्तमान में चल रहे हैं उसमें विकृतियां बहुत आई हैं। और इसलिए कृपालु देव का जो जीवन है वो स्वयं इस बात का उपदेश देता है, बोध देता है। वो किसी भी संप्रदाय के साधु के पास नहीं गए, गए क्या? वैष्णव संप्रदाय के साधु के पास नहीं गए, जैन संप्रदाय में स्थानकवासी, दीरावासी, दिगंबर, किसी साधु के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? अपने को विचार करना चाहिए, वो क्यों नहीं गए? क्या कारण था? क्या वो सत्संग नहीं चाहते थे? क्या अपने से बड़े गुणवान हो, ज्ञानी हो, साधु हो, ग्रस्त से भी आगे हो, उनके पास जाना नहीं चाहते थे क्या? कोई मान अपमान का सवाल था क्या? कुछ नहीं था। नहीं जाते थे इसका कारण था कि नहीं जाने लायक था, इसलिए नहीं जाते थे। जाने लायक हो और नहीं जाते थे सो बात नहीं थी, वो विवेक था। ऐसे नहीं जाना चाहिए। बिना पहचान तो उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसके पहले भावना तो होती है कि नहीं होती है? भावना शुद्ध अंतःकरण से होती है तो बोलने का अवसर कमाएगा, बोलने का मौका कमाएगा। अगर अपनी भावना को साथ चलेंगे तो, इसलिए सही भावना रख करके कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी भावना को अनुकूल है या हमारी भावना को प्रतिकूल है। भावना जिसको सही होती है उनको दो बात तो अवश्य होती ही है। एक को भावना स्वयं कोमल होती है तो उनको कहीं भी ठेस पहुंचती है तो पता चल जाता है मेरी भावना को ठेस क्यों पहुंचती है, मुझे यहां नहीं जाना है। पर जब जब भावना को ठेस पहुंचती है तो आत्मकल्याण का विवेक करने की जागृति और विवेक साथ साथ पैदा हो जाता है, ये दो बात बन जाती है। तो इसी कारण से जीव बच जाता है, बचता है तो इसी कारण से बचता है। श्रद्धा अंधी होती है पर अंधश्रद्धा नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा खुद तो अंधी ही होती है लेकिन हमारी श्रद्धा अंध नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब क्या कि ज्ञान तो देखता है, ज्ञान तो विवेक करता है, तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होता है वो अंधश्रद्धा नहीं होती है, और बिना ज्ञान जो श्रद्धा होती है वो अंधश्रद्धा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मत का आग्रह छोड़ देना, आत्मा का धर्म आत्मा में है। क्या है? आत्मा का धर्म आत्मा में है, आत्मा का धर्म आत्मा के बाहर कहीं नहीं है। ये विषय बहुत विशाल है। आत्मा का धर्म मैंने आत्मा स्वभाव परिणमित होवे, ऐसा स्वभाव आत्मा में है, और वो परिणमन भी आत्मा में होता है, कहीं आत्मा से बाहर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कहने के पीछे कौन सा मतलब है कि हम लोग बाह्य दृष्टि के कारण से धर्म का ना कोई बाह्य परिस्थिति से निकालना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे जिज्ञासु और विद्वान ने हमको प्रश्न पूछा कि सम्यक दृष्टि होने के लिए उसके बाह्य परिस्थिति का क्राइटेरिया कौन सा होता है। अब वो बात तो इसका कोई नियम है ही नहीं, क्यों कि त्रिज में सम्यक दृष्टि होता है। एक मेंढक जो पानी के छोटे से खाबूचिया क्या बोलते हैं उसको है? कितना थोड़ा सा पानी रहता है ना, खड्डा, खड्डा में पानी रहता है, हमारे यहाँ खाबूचिया बोलता है गुजराती में, उसको भी सम्यक दर्शन होता है। अब बाह्य परिस्थिति क्या उसकी नाप हो गया। और गौतम स्वामी जैसे अन्य मत में थे, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, समोसरण में आए, दिगंबर दीक्षा तो साधु हुए तब लिया, लेकिन इसके पहले तो सम्यक दर्शन हुआ, भगवान के वाणी सुनते ही सम्यक दर्शन तो हो गया। तो अन्य मत में भी होता है, अन्य मत तक ऐसा त्याग नहीं किया था, बाह्य त्याग, ये बाह्य परिस्थिति की बात चलती है, अंतर में छूट जाता है, लेकिन अंतर की बात तो अंतर में रह गई और बाहर में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। बाहर में तो सबने देखा कि ये इंद्रभूति आया। कौन आया? इंद्रभूति आया। कौन है इंद्रभूति? के वेदांत के कोई प्रखर गुरु है, वेदांतियों का एक प्रखर गुरु है जिसको हजारों शिष्य है, ऐसा कोई वेदांत का, वेदांत संप्रदाय का महात्मा बड़ा है, वो आया समोसरण में, लेकिन उसको सम्यक दर्शन हो गया, भगवान की वाणी स्थिरी, इसके पहले वाणी चालू नहीं हो रही थी। ऐसा कोई पात्र नहीं था, इंद्रभूति जैसा कोई पात्र नहीं था सारे समोसरण की सभा में। इंद्र खुद भी इतना पात्र नहीं था, स्वधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि होता है, वो भी उतना पात्र नहीं था कि भगवान की वाणी चालू हो जाए। एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, आठ दिन, 66 दिन चले गए, कितने 66, भगवान तो मूर्तिवत बैठे रहे महावीर स्वामी, जैसे प्रतिमा ही देखो, प्रतिमा कुछ बोलती नहीं, वैसे समोसरण में बैठे रहे। सब चिंता करने लगे, अरे अंतिम तीर्थंकर है, अपना तीर्थादिनाथ है, उपदेश क्यों नहीं देते अपने को, उपदेश के लिए सब लालायत थे, बैठे हुए थे, सभा भरी हुई रहते थे, भगवान का उपदेश नहीं छूटता था। एक दिन, दो दिन करके 66 दिन, दो दो महीने निकल गए। फिर इंद्र ने अवधि ज्ञान में उपयोग लगाया कि बात क्या है, ये बहुत बड़ी आपत्ति है हमारे पे कि भगवान का उपदेश नहीं चालू होता है, इच्छा तो होती नहीं भगवान को, योग नहीं बैठता, क्या कारण है? देखा घरे भगवान की सभा में खुद गणधर देव कोई है ही नहीं। अभी तो भगवान के सभा में गणधर देव नहीं है तो उत्कृष्ट उपदेश झेलेगा कौन? दूसरे सम्यक दृष्टि भी नहीं झेल सकते वो बात को, जो बात को गणधर झेलते हैं, कितनी उनकी क्षमता होती है, योग्यता होती है। ऐसे कोई पात्र नहीं थे, उपयोग लगाया को कोई गणधर नहीं है। फिर भगवान का गणधर कहां विराजमान है? देखा तो बोले को हो, वर्तमान परिस्थिति में तो वेदांत का कोई प्रखर गुरु है और बहुत अभिमान में चढ़ा हुआ है माता चढ़ गया था, क्योंकि गुरु होता है तो माता चढ़ जाता है, हजारों शिष्य होता है, तो चढ़े हुए थे। अब क्या करना, परिस्थिति बहुत विचित्र थी। वो ब्राह्मण का रूप लेकर के गए इंद्र, तो विकृत शरीर होता है ना। महाराज आप तो महान हैं, बड़े महान हैं, बहुत बड़े गुरु है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा मान वाले को थोड़ा मान भी देना पड़ता है, थोड़ा मक्खनबाजी कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम क्यों आए, क्या आपके पास से ज्ञान देने को आया हम। ठीक है बैठो बैठो, बोलो क्या बात है, कौन सी समस्या है। कि मेरी समस्या है, उन्होंने प्रश्न निकाला, वो तो ज्ञानी थे, सोचा को जवाब दे सकता नहीं है, नहीं दे सकेगा, तो प्रश्न पूछा, उलझन में आ गए। उसने बोला कि इसमें तो इज्जत का सवाल है, मैं इतना महान बड़ा गुरु, ये मामूली आदमी, और इसका प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं आता है क्या, मेरी इज्जत चली जाएगी, ये सब मेरे शिष्य हजारों शिष्य बैठे हैं। उसने चालाकी कर लिया, चल 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 तेरे जैसे हम बात नहीं करते, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु से बात करेंगे, तेरे से बात नहीं करेंगे। हाँ महाराज, ये बात आपने ठीक किया, मैं तो मामूली आदमी हूँ, आप पधारिए मेरे गुरु के पास। उनको दवा ले जाने के लिए तो आया था, उसने तरकीब कर लिया, ये बात आपने सही किया, मैं तो बिल्कुल मामूली आदमी हूँ, मेरी हैसियत क्या है, आपसे बात करने की मेरी कोई हैसियत होती है क्या, अब मेरे गुरु से चलिए। फिर संवत्सरण में ले गए, फिर भगवान की वाणी चालू हो गई, माथा चढ़ गया था, वो तो मानस्तंभ के पास ही उतर गया, यहाँ से पास होते ही मान तो खत्म हो गया। भगवान के दिव्य वैभव को देखा, बहुत प्रभावित हो गए, भक्तिमान हो गए, वाणी चालू हो गई, उपदेश मिल गया, और भगवान के गणधर हो गए। योग्यता बड़ी चीज है, कोई बाह्य परिस्थिति से चतुर्थ गुण स्थान का नाप निकलता नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही बात होती है कि इसका दर्शन मोह का उदय खत्म हो गया। मिथ्यात्व और अनंतानुमंदी की प्रकृति का उदय नहीं होता, और उदय के अनुसार परिणाम नहीं होते, द्रव्य और भाव दोनों में ये बात खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा का धर्म आत्मा में है, तुमको आत्मा देखना पड़ेगा, आत्मा का धर्म देखने के लिए आत्मा में देखना पड़ेगा, वाणी में देखोगे नहीं चलेगा, शुभ राग में देखोगे नहीं चलेगा, कितना शुभ करता है कितना अशुभ करता है वो नहीं चलेगा, आत्मा का धर्म आत्मा में है बस। आत्मत्व प्राप्त पुरुष का बोधित हुआ धर्म आत्मता मार्ग रूप होता है। देखो ये शब्द संयोजन भी बिल्कुल मौलिक है और वाक्य संयोजन भी बिल्कुल मौलिक है। बहुत से शास्त्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कृपालु देव की जो भाषा है बिल्कुल अलग टाइप की है एकदम। आत्मत्व प्राप्त पुरुष का बोधा हुआ धर्म, जिसने आत्मत्व को प्राप्त किया है, क्या ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ नहीं लिखते हैं, आत्मत्व को प्राप्त कर लिया है बस। तो जिसने स्वरूप अनुभव किया, आत्मस्वरूप का जिसने अनुभव किया, वो अनुभव में आत्मा की प्राप्ति बोली जाती है। आत्मा तो अनादि से है ही, उसको प्राप्त करना नहीं प्राप्त करने का कोई सवाल किसी के लिए होता ही नहीं। लेकिन अनुभव होता है तो प्राप्त हुआ ऐसा बोला जाता है, बाकी आत्मा तो सबके पास है ही, वो तो कोई लाने का नहीं लाने का सवाल नहीं है। अनुभव हुआ तो प्राप्त हुआ, पर अनुभव नहीं हुआ वहां तक वो है फिर भी नहीं होने के बराबर ही है। जैसे आत्मा में अनंत शांति है, लेकिन वर्तमान अवस्था में अशांति भोगता है तो शांति किस काम की, वो तो नहीं होने के बराबर है। इसलिए जिसने आत्मपना प्राप्त किया, आत्मत्व मैंने क्या कि आत्मपना, ये त्व और ता पीछे जिस शब्द के पीछे लगता है उसमें उस पना, उस रूप, उस पना वो कहने का वाच्यार्थ है। तो आत्मत्व मैंने आत्मपना जिसने अनुभव में प्राप्त किया, वो जो बोध देता है, वो जो उपदेश देता है, उसके उसकी वाणी जो निकलती है उस विषय में, वो धर्म, वो बराबर धर्म है, वो सही धर्म बताता है, क्योंकि उसने धर्म प्रकट किया है। वो आत्मता मार्ग रूप होता है, आत्मता पहले आत्मत्व लगाया था, अभी आत्मता लगाया, वो आत्मपना का मार्ग उस रूप होता है। मार्ग मैंने उपाय, इलाज, इससे आत्मा प्राप्त हुए ऐसा इलाज उस में इसकी वाणी में निकलता है, वो देख लेना, दूसरा कुछ मत देखो। क्षयोपशम है तो हर बात का अर्थघटन हो सकता है, कर सकता है, वो मत देखो। शब्दार्थ बराबर आता है वो भी मत देखो, भावार्थ बराबर आता है वो भी मत देखो, और नए ज्ञान होता है शास्त्र के अनुरूप तो नयार्थ बराबर आता है वो भी मत देखो, लेकिन परमार्थ बराबर आता है कि नहीं वही देखो। क्या देखना है? परमार्थ देखना है, बाकी सब अर्थ है उसको देखने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें से अनर्थ भी हो सकता है, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए वो मत देखो, परमार्थ को देखो, फिर कहीं बोलने का सवाल नहीं है। तो कहते हैं कि आत्मत्व प्राप्त पुरुष का बोधित हुआ धर्म आत्मता मार्ग रूप होता है, बाकी के मार्ग के मत में पड़ना नहीं। बहुत क्लियर बात सूचना कर दिया है कि बाकी के मार्ग के मत में पड़ना नहीं। आत्मा की बात करते हो वहां जाना, और आत्मा प्राप्त हुए ऐसी बात होती हो अपनी भावना के अनुकूल, वो बराबर है, बाकी सब अन्य मत चलता है, समझ लेना। किसी भी बैनर के नीचे चलता हो अन्य मत चलता है, समझ लेना। तीर्थंकर देव का मत वो नहीं है, ऐसी बात है। बाकी के मार्ग के मत में पड़ना नहीं, इतना कहने पर भी या इतना होने पर भी अगर जीव से सत्संग के बाद भी कदाग्रह मत मतांतर आदि दोष न छूट सकता हो तो फिर उसे संसार से जन्म मरण से छूटने की आशा अपेक्षा रखने नहीं जाओ। बहुत साफ बोल दिया कि इतना हमने कहा, इतना हमने बोला है, फिर भी अंदर से आग्रह नहीं छूटता हो। मत मतांतर के विषय में पढ़ते हैं हम, क्या हमारे कदाग्रह नहीं छूटता हो संप्रदाय की क्रिया वगैरह का, उस को जन्म मरण से छूटने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो कभी नहीं छूट सकता, उनकी योग्यता का नाप इधर दे दिया है। फिर से क्या कहते हैं देखो कि इतना होने पर भी यदि जीव से सत्संग होने के बाद भी, मैंने ज्ञानी पुरुष का सत्संग मिलने के बाद भी कदाग्र और मत मतांतर आदि दोष न छूट सकता हो, तो फिर उसने छूटने की आशा रखना नहीं, आशा करनी नहीं चाहिए। वो नहीं छूट सकता क्योंकि इसका पूर्वग्रह की पकड़ बहुत है। इसलिए मुमुक्षु को एक बात का सिद्धांत लेकर के धर्म की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वो सिद्धांत ऐसा है कि हमें हमारे सभी पूर्वग्रह छोड़ देना है। ऐसा अभिप्राय को लेकर के बैठना है। क्या? क्यों? क्योंकि पूर्वग्रह रख करके हम समझना चाहेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे, ये हालत हो जाएगी। ये बात शांत चित से, गंभीरता से, गहराई से अंतर में अवलोकन करके साफ करनी चाहिए। पूर्वग्रह लेकर के सत्संग करने वाले को सत्संग निष्फल होता है। उपाल कृपालु देव ने 609 नंबर के पत्र में लिखी है कि सत्संग निष्फल होने के कारण है, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण पूर्वग्रह है। जो सत्संग को निष्फल करता है, सत्संग में आने वाले को ये पहला अभिप्राय को साफ करना होगा कि हमें हमारे सभी पूर्वग्रह को छोड़ करके समझना है, वरना हम समझने को बैठेंगे समझ नहीं पाएंगे, ये हालत हो जाएगी। इसलिए जो पूर्वग्रह होता है वो सही समझ करने के लिए सबसे बड़ा अवरोध है और अमूल्य अपूर्व ऐसे सत्संग को निष्फल करने वाला है। देखो क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है, छह सौ नौ सत्संग का अपूर्व अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे योग में, उसी सत्संग को के योग को बाध करने वाले ऐसे बुरे कारण का त्याग नहीं किया। वो बुरे कारण में मिथ्या आग्रह, वो पूर्वग्रह है। मिथ्या आग्रह है, वही पूर्वग्रह है। स्वच्छंदपना, प्रमाद और इंद्रिय विषयों की उपेक्षा न की हो, ऐसे चार बात लिखा है। तो मिथ्या आग्रह वो पूर्वग्रह है, पूर्वग्रह को छोड़ देना चाहिए। पूर्वग्रह क्या होता है कि कोई बात सही होती है फिर भी हमारी पकड़ ऐसी होती है कि इससे बड़ी बात को गौण कर देती है, और अपनी बात सही है इसलिए बड़ी है। क्या? मेरी बात सही है कि नहीं है, तो कह के सही है, तो सही है इसलिए बड़ी है वो नहीं है। कौन सा दोष बड़ा है, कौन सा दोष छोटा है, इसका विवेक करना चाहिए। दोष सभी दोष ही है, इसलिए कोई भी दोष अच्छा नहीं है, वो बात सही है। फिर भी मेरी बात सही है इसलिए मैं इसकी पकड़ करूं, ये पूर्वग्रह हमको आगे बढ़ने में अड़ाएगा या प्रतिबंध रूप होगा या सत्संग को निष्फल करने वाला होगा। ये बहुत विषय अच्छा है, थोड़ा विचार करने लायक विषय है। इसलिए अगर पूर्वग्रह नहीं छूटता हो तो सत्संग मिलने के बाद भी उनको छूटने की आशा करना नहीं चाहिए, तो नहीं छूट सकता, क्योंकि वो अपना पूर्वग्रह को छोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, घुसती नहीं, स्थान पाती नहीं, वहां अवकाश होता नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो सही बात में भी पकड़ आनी या नहीं आनी, उसका विवेक होना जरूरी ही है। ये सब बातें थोड़ा बहुत विस्तार से चर्चा करने योग्य है। जब भी अनेक प्रकार के जो छिपे हुए दोष हैं या हमको जो अवरोध रूप दोष है वो निकल जाए, वरना वो नहीं निकलते और हमारा काम होता नहीं, ऐसा बन जाता है। यहाँ तक रखें और चर्चा करेंगे।
श्री सदगुरु।